जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयिर्याळं नमो वज्झायाळं नमो लोये सव्वसाहूलं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्व मंगल मांगल्यम् सर्व कल्याण कारकम् प्रधानम् सर्व धर्माणाम् जैनम् जयतु शासनम् मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी विरचित यह अनुपम ग्रंथराज मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र यहाँ विराजमान है। इसमें व्यवहाराभासी प्रकरण जो जैनाभासियों के अंतर्गत लिखा गया है और उस प्रकरण में भी सम्यक चारित्र के लिए इस जीव ने पहले भी बहुत पुरुषार्थ किया। वो सोचता है कि मैं तो चारित्र आ गया, मुझे चारित्र ले लिया, चारित्र पाल रहा हूं, पर वास्तव में वो अंदर मिथ्यात्व ही पुष्ट होता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, लेकिन इस रहस्य का उद्घाटन गुरुदेव श्री की वाणी में होना अपने आप में यही पंचम काल का अछेरा है। कैसे हो गया ये सब? क्योंकि ये दुर्लभ चीज है। व्यवहाराभास में याने क्रिया कांड में संतुष्ट होने की वृत्ति, बाह्य शास्त्र ज्ञान में संतुष्ट होने की वृत्ति, सच्चा व्यवहार तो है नहीं, पर व्यवहार जैसी क्रियाएं करता है और उसमें संतुष्ट होता है, ऐसे जीव की क्या अंदर अभिप्राय में भूल चलती है, उसकी चर्चा अपन ने परसों से प्रारंभ की है। पेज नंबर 243 पर तीन चार पंक्तियां तो कल अपन ने पढ़ी थी, आज चौथी पंक्ति में जो शब्द आया है, तीसरी में परिणामों नी परंपरा विचारता अभिप्राय मा जे वासना छे तेने विचार तो नथी। इसके पहले कल जो विषय आ गया था वो आपके ख्याल में होगा, बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है यानी उसकी खेच है, किसी भी कीमत पर वो क्रिया करना ही है, परंतु परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं। उस क्रिया के निमित्त से भले क्रोध आ जावे, मान पोषण होता होवे, जैसे कभी स्थितिकरण में गुरुदेव श्री ने फरमाया कि जीव क्यों भ्रष्ट होता है धर्म से, या तो काम वासना की तीव्रता होवे तो मार्ग छोड़ देवे, या क्रोध आ जावे, मान पोषण होवे, किसी विशेष लोभ की यश इत्यादि की प्रयोजन की सिद्धि होवे तो जीव धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं। यहाँ तो वहां तो भ्रष्ट होने वाले को स्थितिकरण करने के लिए प्रेरित किया है, वो सम्यक्त के अंग का प्रकरण है वो पुरुषा सिद्धि उपाय का, पर यहाँ तो कहते हैं कि कषाय तीव्र है कि मंद है, कि जो क्रिया धर्म की हो रही है, पूजा कर रहे हैं तो पूजा के भाव हैं कि नहीं, करते हैं पूजा और उपयोग चलता है व्यवस्था में, कभी बहुत टाइम हो गया प्रवचन होने वाला है, ये ज्यादा खेच कर रहे हैं, दुनिया भर के हजारों हैं, उसके सबकी अलग अलग व्याख्याएं और परिस्थितियां हैं, जो भी हो लेकिन परिणाम कैसे रहते हैं इसका विचार करना चाहिए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि जीव परिणाम का भी करता नहीं जे समय जे पर्याय क्रम में जे थवानी होए शुद्ध के अशुद्ध ते पर्याय थया बिना रहे नहीं। एक तरफ तो पर्याय की अचलता अटलता, उसका सिद्धांत का गीत गाते हैं, फिर कहते परिणाम का विचार करना चाहिए, तो हमारे विचार करने से क्या होता है, कोई परिणाम सुधरने वाले होंगे तो सुधरेंगे, बिगड़ने वाले होंगे तो बिगड़ेंगे। इसका वही जवाब है जो गुरुदेव श्री ने मूलचंद जी को दिया था, हैं? आपको सबको मालूम होगा कि जो परिणाम जे समय होने वाला है ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने जाना है कहा है, तो तुमको सर्वज्ञ की श्रद्धा है और वो सर्वज्ञता ज्ञायक स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होती है, तो तुमको ज्ञायक स्वभाव अंदर वस्तु में पड़ा है, ये श्रद्धान है, जिसको ये श्रद्धा है उसके परिणाम बिगड़ते ही नहीं है, उसके तो अनंत काल के लिए परिणाम सुधरने का नंबर चालू हो गया इसलिए कहीं कहीं आप देखिए, अभी हमने पिछले बार जो अपन ने छह ढाला वर्ष मनाया था अपने गुरुदेव को, जगह जगह छह ढाला के शिविर लगाना, गुरुदेव के व्याख्यान चलाना, ऐसा बहुत 25-30 शिविर लगाए थे गांव गांव में, दो चार तो मैंने भी अटेंड किए, तो उसमें जो तीसरी ढाल का जो अंतिम प्रवचन है एक दो, उसमें गुरुदेव ने ये विषय बहुत लिया है क्रमबद्ध वाला, तो उसमें तो ऐसा बोला है कि अकेली क्रमबद्ध की बातें करे तो उसको क्रमबद्ध की श्रद्धा हो गई, ऐसा नहीं है सबसे बड़ा महान सूत्र अगर गुरुदेव ने दिया कि ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि से ही क्रमबद्ध की श्रद्धा होती और वो ही पुरुषार्थ है, हैं? तो जिसको ये श्रद्धान हो गया कि परिणाम तो जो होने वाले है वो होंगे, तो तुमने कहां देख करके ये बात कही है, किसको देख करके ये बात कही है, परिणाम को देख करके कही है कि अपरिणामी ज्ञायक स्वभाव को देख करके कही है, उसका फर्क पड़ता है, यही तो अभिप्राय का कमाल है, ये है? तो जीवो पोतानो परिणाम थतो देखे तेनाज ऊपर दृष्टि रहे छे। अभी दूसरा स्टेप कि वो परिणाम अच्छे हैं, वो लौकिक दृष्टि से व्यवहार दृष्टि से प्रभावना के हैं, पूजा के हैं, व्रतशील संयम के हैं, बहुत अच्छा व्रति संयमित जीवन है, निवृत्ति ले रखी है, किसी के प्रपंच में नहीं उलझते हैं, किसी की फालतू की निंदा प्रशंसा में नहीं उलझते हैं, और अपने बस स्वाध्याय करना चिंतन मनन करना इसमें ही लगाते हैं, तो ये तो बढ़िया है ना, ये बहुत बढ़िया है, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो इधर है कि वो परिणाम में संतुष्ट हो गया, ये बहुत, मेरा तो समय बहुत अच्छा जाता है, ऐसा लगता है कि मनुष्य जीवन में यही करने लायक था और ये मैंने कर लिया, अरे भाई साहब ये अनंत बार हुआ है, असली तो माल तो इसमें है बात में द्रविलिंगी मुनि के परिणाम और अपने मिलाओ, जिसको गुरुदेव कहते हैं कि वो कोई उसकी शरीर से चमड़ी उतारे, इतना क्रूर उपसर्ग करे कोई और उसमें खार छांटे, तो भी आंख भी तिरछी नहीं करे, आंख का कोना भी लाल नहीं होने दे रहे, शांति से विचार करेगी, ये मेरे कर्म का फल है, ये तो सब होने वाला था सो होता है, मुझे शांत भाव से सहन करना, ये सब लिखा है इसमें। ये जो मैं बोल रहा हूं ना द्रविलिंगी का कैसा विचार होता है, 3-4 पेज के बाद में इसमें लिखा है कि मुझे शांत भाव से सहन करना चाहिए, अगर मैं नहीं सहन करूंगा, क्रोध आदि करूंगा तो नरकादि में जाना होगा, और अगर शांति से सहन कर लूंगा तो स्वर्ग मोक्ष में जाना होगा। हैं? और जो देखो कर्म ने तो किसी को नहीं छोड़ा, आदिनाथ को भी नहीं छोड़ा, पारसनाथ को भी नहीं छोड़ा, कर्म तो जो बांधे हैं वो तो भोगने ही पड़ते हैं भाई। तो ये सब कर्म का उदय अपन भोग रहे हैं, तो उसको कर्म फल जान करके भोगो, उसमें हर्ष विषाद क्यों करना। मैं आपसे पूछता हूं इस विचार में क्या गलती, इतना बढ़िया इतना उज्जवल कर्म सिद्धांत तो अपने यहां मान्य है ही, कर्म वो ये तो अमित गति आचार्य हुए हैं, उन्होंने एक सामायिक पाठ बनाया है, उसका हिंदी अनुवाद युवल जी ने किया है और वो इसमें है जिनेंद्र अर्चना में। स्वयं किए जो कर्म सुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने सुभाशुभ किए जो कर्म कमाए हैं वो तो भोगने में आएगा ही आएगा है, तब इसमें क्या गलती है, ये तो तत्व की बात है, उसने तो तत्व का चिंतन किया है, उसने व्यवहार कथन को ही परमार्थ मान लिया, आत्मा कर्म फल का भोगता है ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने का कथन है, परमार्थ से आत्मा चैतन्य मूर्ति भगवान अकर्ता और अभोक्ता है। दृष्टि तो ऐसी होनी चाहिए कि मेरे में कर्म का उदय है ही नहीं, कर्म का फल है ही नहीं, त्रिकाल निरावरण सकल निरावरण प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, वो कहां गई वो बात, वो बोले भाषा में नहीं भूले। देखो जो भाषा मैंने बोली अभी सैंपल आपको दिखाया, ज्ञानी भी ऐसा चिंतन करते हैं व्यवहार ने वाला, पर उस समय उनका जो सम्यक ज्ञान है भेद ज्ञान है और जो स्वभाव दृष्टि है वो कायम रहती है, वो भान उनको बना रहता है कि मैं तो अकर्ता और अभोक्ता स्वभावी ध्रुव तत्व हूं, उसी में लीनता का प्रयत्न करते, चैतन्य में लीनता के बल से उपसर्ग सहते, मंद कषाय के बल से उपसर्ग सहन नहीं करते। कितनी मार्मिक बातें, और ये सब टोडरमल जी ने खोली, ये उनकी पैनी जो प्रतिभा है चिंतन है उसका परिणाम है। तो ये इसका खुलासा मैंने किया, परिणामों नहीं परंपरा विचारता अभिप्राय माजे वासना छे, क्रोध नहीं करना, क्यों नहीं करना, इसे इसमें आश्रव तत्व के भूल में भी लिखा है इसी में कि क्रोध नहीं करना, क्यों नहीं करना, परिस्थिति सेवन नहीं करना तो क्यों नहीं करना, अरे क्रोध करेंगे तो दुनिया में बदनामी होगी, नरक जाना पड़ेगा, लोग कहेंगे इतने बड़े त्यागी होकर के जरा सा संयम नहीं रख सकते, इतने बड़े पंडित विद्वान हो गए जरा सी गलती हो गई या कोई जरा सी व्यवस्था नहीं हो पाई तो क्रोध आ जाता है, तो अब भाई अपनी इज्जत के खातिर थोड़ा एडजस्टमेंट करना चाहिए। क्रोध करने से अपयश होता है इसलिए क्रोध नहीं करना, ये परिणामों की परंपरा समझे, करना नहीं करना तो उसके हाथ में है ही नहीं, लेकिन मान लीजिए मंद कषाय रखी है, कोई भी कषाय हो, काम आदि की तीव्रता नहीं होना, विषयों की तीव्रता नहीं होना, लोभ नहीं करना, किसी से कुछ याचना नहीं करना, क्यों नहीं करना, अरे बड़ी बदनामी होती उसमें, लोग कहेंगे इतने पंडित होकर के ये तो चाहे जिससे चाहे जो कुछ मांगते रहते, इसलिए याचना नहीं करना, समझ में आया, क्यों लगाओ ये फार्मूला समझ लेना। अब कभी दोबारा मैं अगर आऊंगा, कब आऊंगा वो तो केवल ही जानते हैं या फिर अक्षय भाई जानते होंगे। यहाँ आना तो होता ही रहता है ना, आनंद भाई के यहाँ तो मीटिंग तो चलती रहती है, तो मैं पूछूंगा कि जो 8 दिन हमने बिताए वो अभी से पेपर आउट कर देता हूं समीर। 8 दिन अपन ने जो चर्चा की उसमें सबसे ज्यादा जोर किस बात पर दिया गया, मेन बात क्या थी कि हम जो भी क्रिया कर रहे हैं या हमारे जो भी परिणाम हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, क्यों पूजा का भाव, क्यों यही पूजा, क्यों समझ में आया यही शास्त्र क्यों पढ़ना, क्यों लगाओ हर चीज में, तो ये परंपरा में पहुंच जाएंगे अपन। हैं ये सब में लगा लेना, जितने भी धर्म कार्य हैं सब में लगा लेना। दान क्यों देना, अरे समाज में जो स्टेटस है, जो अपना पोजीशन है, उस हिसाब से नहीं लिखावे। अपने यहां तो काफी स्वस्थ प्रवृत्ति है, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होती है देख अपने मुमुक्षु समाज में, कई जगह पे हम जिस समाज में हैं, जहां से पहले का जो सोसाइटी थी, एक क्षेत्र वाले चंदा मांगने गए तो सेठ जी ने कहा कि पहले सबके यहां जाके आओ, फिर जिसने जो लिखाया हो वो लिस्ट मुझे बताना, फिर बाद में मैं नक्की करूंगा तुमको कितना देना है। तुम्हें अपने भाव से नहीं देना है, तुम्हें जो कंपटीशन वाला सेठ है, ये गांव में तो होते ही हैं, दो तो होते ही हैं, हीरो और विलेन तो सब जगह होते हैं तो जो कंपटीशन वाला सेठ है उसने कितना लिखाया, वो 5,000 लिखाएगा तो मेरा 6,000 लिखने, अरे गजब हो गया ऐसा बहुत था, अभी भी होगा कि नहीं होगा अपने को तो उतना उसमें प्रवेश है ही नहीं। हाँ अरे ये तो ऐसा भी बहुत होता है, ऐसा भी बहुत होता है, अपीलें करनी पड़ती हैं, कहना पड़ता है, ऐसा है भैया। तो ये यहां देखो तो मंद कषाय रखी, क्रोध मान माया लोभ तीव्र नहीं किए तो क्यों नहीं किए, एक तो उसमें धर्म मान्यता, समझ में आया, वो मंद कषाय में धर्म मानना, और अगर तीव्र कषाय करेगा तो नरक जाएगा, बदनामी होगी, ये होगा वो होगा इत्यादि इत्यादि, तो उसका अभिप्राय सही कहां रहा, तो कोई पूछ सकता है सही अभिप्राय क्या होना चाहिए, क्यों नहीं करना क्रोध, क्रोध मेरा स्वरूप नहीं, यहां से बात चालू होना चाहिए। वो परसों कल ही आया था ना वो पर्चा एक प्रश्न का उसमें प्रश्न था कि ये क्रोध आदि को काबू में कैसे रखना। देखो पहले हम तिलस्मी कथाएं पढ़ते थे बचपन में, बहुत तिलस्म बच्चों की आती ना, आजकल तो इंग्लिश में आती, सब हिंदी में भी आती होंगी। उसमें कहते एक राजकुमार, कोई राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए कोई बगीचे में गया, वहां पे एक राक्षस रहता था, उसने उसको कैद कर रखा था राजकुमारी को, तो उसने उसका हाथ काट दिया तो एक और राक्षस खड़ा हो गया, जितने खून की बूंदें गिरी उतने राक्षस खड़े हो गए। तो वो राजकुमारी ने उसको समझाया कि इसको मत मारो, इसको मारने से ये नहीं मरेगा, इसका स्वरूप ऐसा है कि जितने टुकड़े होंगे उतने नए राक्षस खड़े हो जाएंगे। है तो ये पिंजरे में तोता है ना ये तोते की टांग तोड़ दो तो राक्षस की टांग टूट जाएगी, ऐसी तिलस्मी कहानियां बहुत चलती दुनिया में। तो यहां क्यों आई ये बात कि विकल्पों से लड़ोगे, पर्याय से लड़ोगे, विकारों से लड़ोगे, तो एक से लड़ोगे तो 10 और खड़े होंगे ये मार्ग ही नहीं है। तो जो तोता है ना मिथ्यात्व, उसमें उसके प्राण बसते हैं विकल्प जाल के कषाय के, हमें तो बाल बोध पाठमाला में बच्चों को पढ़ाते मिथ्यात के कारण कषायें उत्पन्न होती हैं, ख्याल में आया, और तत्वज्ञान के अभ्यास से ही कषायों मिटती हैं, इसलिए तत्वज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। और तत्वज्ञान का अभ्यास का मतलब अकेला शास्त्र ज्ञान नहीं, तत्व माने भगवान आत्मा, तत्व वस्तु का स्वभाव, ज्ञायक भाव, वो मैं हूं ऐसी केलमणी, ऐसा बारंबार उसकी महिमा, उसका विचार, उसका भाव भाषण का प्रयास इत्यादि जो व्यवहार में बोलते हैं सब, उससे कषाय कंट्रोल होती है। तो इस तरह अभिप्राय में जे वासना छे, अभी आज अपन को इसका विचार करना, ये क्या चीज होती, अभिप्राय का मतलब समझ गए, कल बताया था क्रिया शरीर की और वाणी की, परिणाम मन के निमित्त से होने वाले जो सुभाषुभ भाव हैं, रागादि भाव, वो परिणाम, सयुक्तम ज्ञान भी ले लेना उसमें, शास्त्र ज्ञान भी परिणाम में गया। और उसके पीछे जो सात तत्व संबंधी भूल है अभिप्राय के लिए बिल्कुल सही शब्द है श्रद्धान, प्रतीति, अध्यवसान, ऐसे कई शब्द आते हैं। तो अनादि काल से तो मिथ्या है, और धर्म की शुरुआत करने के लिए देखो उपदेश और बाह्य प्रयोग तो क्रिया की प्रधानता से होता है। क्रिया जो है वो प्रवेश द्वार है धर्म का। छोटे बच्चे को अपन मंदिर ले आएंगे, फिर उससे कहेंगे देखो भगवान जी कैसे बैठे हैं, वो बाबू भाई ऐसे सिखाते ना, बाबू भाई अपने छोटे बाबू भाई फतेहपुर वाले, ये भगवान कैसे बैठे हैं, ऐसे बैठे तुम भी भगवान बन के बैठ जाओ। क्रिया से उसे कहेंगे भगवान को नमस्कार करो, नहीं करेगा तो उसकी गर्दन पकड़ के कर देंगे, हैं? मतलब हम उस छोटे बच्चे को संस्कार क्रिया के माध्यम से देते हैं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं, क्योंकि क्रिया स्थूल है। आज क्रिया सीख रहा है तो कल को उसको भाव का भी चांस है। लेकिन धर्म की शुरुआत अभिप्राय पलटने से होती है, ये फार्मूला समझना। समझाने के लिए क्रम ऐसा रखा, क्रिया परिणाम अभिप्राय, ये स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर का सिद्धांत है। कोई चीज समझाई जाती तो पहले स्थूल, फिर सूक्ष्म, फिर और सूक्ष्म, ठीक है। लेकिन परिणमन में अभिप्राय, परिणाम और क्रिया, अभिप्राय पलटेगा तो परिणाम समझ लो अनंतान बंदी कषाय तो पहले ही गई उसी वक्त, और बाकी जो रही सही है उसमें भी पावर नहीं रहता। और जैसी समझ लो भूमिका है गुण स्थान के अनुसार, वैसी क्रिया सहज होती, वो खींच के नहीं करनी पड़ती। एक 5 वर्ष के बालक को दौड़ना, भागना, तूफान करना, शैतानी करना, ये उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, वो उसकी उम्र के हिसाब से उसकी क्रिया सहज होती है। उससे आप 20 वर्ष के बालक जैसी क्रिया की अपेक्षा रखो तो ये अपनी मूर्खता है। और जो 25 वर्ष का बालक है उससे कहो पहले तो तू बड़ा शांत बैठा रहता था, अभी इधर उधर भागता है, कॉलेज जाता है, सिनेमा जाता है, तो वो उसके भाव वैसे होंगे तो वैसी क्रिया होगी। तो मेन चीज जो है केंद्र बिंदु वो अभिप्राय है। अभिप्राय यानी मान्यता, इसको उदाहरण में लगाना। मैंने उस पुस्तक में क्रिया परिणाम अभिप्राय में चार्ट बनाए, जैसे कि पूजा कर रहा है कोई व्यक्ति, अब इसको 3 पर्दों में फिट करना, तो मुख से पूजा बोलना, सामग्री चढ़ाना, ये क्रिया हो गई। फिर उस समय जो भी अपने भाव हो रहे हैं जिनेन्द्र भगवान की महिमा के इत्यादि जो भी हो रहे हैं वो परिणाम हो गया। अभिप्राय क्या हुआ? अगर उसमें कर्ता बुद्धि है, उसमें संतुष्टि है, उसमें धर्म बुद्धि है तो कोटा अभिप्राय। अगर भेद ज्ञान है, ज्ञानी जानते हैं कि ये राग भी मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो चैतन्य मूर्ति हूं, तो ये सम्यक अभिप्राय। यानी सम्यक दर्शन कहो कि भेद ज्ञान कहो कि आत्मानुभूति कहो, ये सम्यक अभिप्राय वाला पार्ट है ये। देखो अभिप्राय की बात तो क्लियर हो ही जानी चाहिए। वो डॉक्टर का उदाहरण दिया था, इसमें भी उदाहरण दिया है। एक लड़का नाटक में लड़की का पाठ करता है, पहले ऐसा होता था ना, अभी भी होता है, लड़की बना देते हैं तो लड़की का पाठ करते हैं, तो उसकी क्रिया परिणाम और अभिप्राय इसमें लगाओ। तो वो मेकअप मैन उसको लड़की बना देगा, मतलब ड्रेस वैसी पहना देगा, मेकअप वैसा कर देगा, डायरेक्टर उसको एक्टिंग वैसी सिखाएगा कि इसको इस ढंग से बोलना, इसको इस ढंग से बोलना। और अगर उसको सक्सेस होना है तो वो भावों की दृष्टि से भी उसमें रम जाता है, तन्मय हो जाता है, तब वो सफल हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता। ऐसे कई आर्टिकल मैंने पढ़े, जैसे किसी ने झोपड़पट्टी में रहने वाले व्यक्ति का रोल किया तो उसने बोला कि मैं 6 महीने तक उधर रहा, उनकी लाइफ, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग, उनके सुख दुख, उनकी भाषा, उनकी पूरी जिंदगी के हर पॉइंट की मैंने स्टडी की। वो आजकल ऐसी भाषा चलती है, मैंने उस किरदार को जिया है, रोल नहीं किया है, नाटक नहीं किया है, अंदर में उसको फील किया है। तब भी 10-10 बार 100-100 बार कट लगने पर सीन फाइनल होता है, ठीक है। तो कोई लड़का नाटक में लड़की का पाठ करता है उस समय अपने को क्या मानता है, बस इतनी बात है। ऐसा एक प्रसंग बना था, खंडवा में हम थे, वहां महावीर जयंती का प्रसंग आया था शायद, तो दो चार युवकों ने बच्चों ने राजकुमार महावीर और उनके मित्र वगैरह का एक संवाद किया कि वो तीसरी मंजिल पे हैं तो ऊपर हैं कि नीचे हैं, स्यादवाद अनेकांत वगैरह सब बताना था। तो जब नाटक पूरा हो गया तो जो लड़का महावीर बना था तो सब जय बोलते ना, ऐसा सब बोलो कुंद कुंदाचार्य देव की जय, जैन धर्म की जय, बड़े जोर से बोले बोलो महावीर भगवान की। उसने अपना माथा ठोक लिया, अरे यार मैं तो खुद ही महावीर हूं। समझ में आया, मतलब मेरे से गलती हो गई, समझ है क्यों, क्योंकि वो उस रोल में अपने को तन्मयता का अनुभव करता है। फिर भी अगर कोई पर्दे के अंदर जाके उसका नाम लेगा तो तुरंत बोलेगा बोलो क्या बात। समझ में आया, तो ये जो हम फील करते हैं अपना स्वरूप के बारे में, कोई डॉक्टर है, मनुष्य है, पंडित है, बिजनेसमैन है, बालक है, वृद्ध है, दौलत राम जी की भाषा में बोले तो मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, ये जीव जीव तत्व संबंधी भूल, आश्रव तत्व संबंधी भूल, ये सब अभिप्राय की बात है। लेकिन इसमें एक शब्द लिया, अभिप्राय में वासना है। वासना क्या होती, तो अभिप्राय का मतलब तो मान्यता, उस मान्यता में जो बहुत सारे धाराएं चलती कर्तापने की, भोक्तापने की, सुख बुद्धि की, तो यहां मुख्य रूप से अपन पांच इंद्रिय के विषयों में जो सुख की मान्यता है उसका नाम है वासना। भले वो स्वास्थ्य के डर से वो परहेज करता हो, किसी को डायबिटीज हो गई हो, थोड़ा मैं तो लंबा करता हूं उदाहरण, आज तो 60 करना है, एक आदमी को डायबिटीज हो गई, अब शुरू में तो छोटे से गांव में तो उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, फिर तकलीफ हुई, फिर गांव के डॉक्टर को दिखाया, सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया, नहीं हुआ तो पास के शहर में आया, किसी ने कहा भैया ये तो गड़बड़ है मामला, तुम तो बंबई जाके दिखाओ। अभी बंबई आया तो उन्हें सब चीजें जो है, ब्लड है, फलाना है, ढिकाना है, उसका टेस्ट करवाया, टेस्ट की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर एकदम से, तुम लोग यार इतना सब केस बिगाड़ लेते हो और फिर हमारे पास आते हो, हम कोई भगवान है क्या? बोलो डॉक्टर भी इतना भेद ज्ञान तो रखते ही हैं, है क्या हम कोई भगवान है क्या? अभी क्या हालत बना रखी है, पहले क्यों नहीं आए? दुनिया भर का उसने लेक्चर दिया। वो बड़ी चतुराई से बोला, देखो डॉक्टर साहब जिसका केस बिगड़ेगा वही तो आएगा ना आपके यहाँ। जिसको वही ठीक हो जाते हम तो आपके पास क्यों आते? आप तो ये बताओ कि हमको करना क्या है। अब रिपोर्ट तो हो गई, रिपोर्ट आपके सामने है। तो डॉक्टर ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा मनोवैज्ञानिक भी था, तुम सही बताओ तुम स्वस्थ होना चाहते हो कि नहीं? तो ये कोई बात है क्या, हजारों रुपया खर्च कर रहे हैं तो काय के लिए कर रहे हैं? अरे लोग बाग अंदर में अभिप्राय में वासना ऐसी पड़ी रहती है कि जो स्वास्थ्य को नुकसानदायक है वो ही खाएंगे, हाँ, और पंडितों को खिलाएंगे जबरदस्ती। और ऊपर से बोले हम है ना आपको कुछ नहीं होने वाला, अरे तुम क्या कर लोगे भले आदमी। फिर तो न हम कुछ कर पाएंगे न कोई कुछ कर पाएगा, बड़े गौरव से बोलते कई लोग, आपको कुछ नहीं होगा मैं हूं ना, अरे तुम करोगे क्या भले आदमी, तुम अपना तो देख लो। फिर उससे कहो अच्छा तुम भी खाओ, नहीं नहीं मेरा तो नहीं चलता है, गजब हो गया। ऐसा घर घर की कहानी है। तो विल पावर देखा डॉक्टर ने, इसके अंदर अगर स्वस्थ होने की कामना है, तीव्र इच्छा शक्ति है, तो ये कंट्रोल कर लेगा, नहीं तो दो चार दिन परहेज करेगा और फिर बाद में गाड़ी ज्यों की त्यों हो जाएगी। उसने कहा बिल्कुल विश्वास दिलाए, डॉक्टर साहब आप जो कहोगे मैं वही करूंगा, मैं कंट्रोल करके बताऊंगा। तो उनका देखो तुमने बहुत, तुम्हारे ये पूरणपुरी ढोकला और ये दुनिया भर की तली भुनी चीजें और ये मिठाई वगैरह सब ये बहुत खाया है, अभी ये सब बंद। और अकेला मिष्ठान बंद ऐसा नहीं, जिस फ्रूट में मिष्टता होती है, केला नहीं खाना, चीकू नहीं खाना, अंगूर नहीं खाना, अभी हापुस की रत्नाकरगी वो कौन सी आती है रत्नागिरी वो कैरी बंद। तो उसने एक बात कही, डॉक्टर साहब आप एक काम करो, ये बंद वाली लिस्ट तो रहने दो तो चालू वाली लिस्ट बता दो चालू क्या करना, खाना क्या, ये दो चार आइटम बता दो वो ही खाएंगे, नास्ती से समझ लेंगे, बाकी कुछ नहीं खाना, अस्थी में नास्ती अपने गुरु ने सिखाया है तो इनका देखो अब तो दूध की उबली हुई शाख और करेले का जूस ये आपको लेना है। बड़ा संकल्पी था, दृढ़ संकल्पी व्यक्ति था, जानता था कि इसको तो कंट्रोल करना ही चाहिए। अपने घर पे आया, उसने बहुत ही समझ लो स्ट्रिक्ट बोल दिया, कड़क, कभी हमारा भोजन खान पान इस ढंग से चलेगा, बाकी सब चीजें जो पहले शौक से खाता था बड़े रस लेकर के, तो वो अभी बंद हो गया। तो पहला कंट्रोल काय पे हुआ, क्रिया के ऊपर, क्रिया बंद हो गई। लेकिन एकदम से ऐसे कोई इच्छाएं बंद हो गई ऐसा तो नहीं है, इच्छा भी होती थी लेकिन चुपचाप रह जाता था है और डायबिटीज तो उसको हुई थी, बच्चों को तो नहीं हुई थी पत्नी को तो नहीं हुई थी, तो वो क्यों भोगे उसका दंड। तो जब होली हो, दिवाली हो, किसी का जन्मदिन हो, किसी का कुछ भी होवे, कभी जमाई आवे, कोई मेहमान आवे, तो उसको भी क्या करेले का जूस हो वो ही परोसा जाएगा क्या, उनका भोजन तो उनके हिसाब से ही बनेगा। अब वो देख करके उसका परिणाम जो है थोड़ा सा विचलित हो जाता है, क्रिया के बाद परिणाम, अभी परिणाम की बात आती है तो परिणाम विचलित क्यों, गोमट सार में ऐसा आता है, भूख लगने के कई कारण बताए, जैसे उच्छुदा की उदीर्णा है ना, और एक आता आहार दन स्नेण, कभी कभी देख के ही भूख लग जाती, पेट भरा हो तो भी देख के खाने का मन हो जाता है, आहार दन स्नेण, तो देख करके उसका मन हो जाए। वो धीरे से बोले एक गुलाब जामुन में देना ना जरा, तो पत्नी ऐसी फटकार लगाए जैसे सेना का जो लेफ्टिनेंट जनरल है वो सैनिक को डांट लगाता है, या स्कूल का प्रिंसिपल किसी स्कूल टीचर को डांटता है, वैसे तुमको शर्म नहीं आती है बच्चों के सामने, मेहमान के सामने, मैं तुमसे क्या बोलूं, दुनिया भर की जैसा चलन होगा वैसा गुजराती में जैसे बोला जाता होगा समझ में आया। तो अभी अभी उसने कंट्रोल कर लिया अभी उसने कंट्रोल कर लिया, बोले अच्छा रहने रहने दे, तो भी पत्नी को भी दया आ गई बिचारी को उसने एक गुलाब जामुन दिया, इतने कृपा करके जैसे भारत सरकार ने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया तो परिणाम बिगड़ जाता है। तो लेकिन दो चार महीने में फिर अभी उसका टेस्ट ही बदल गया, अभी क्रिया भी नहीं होती और सामने कुछ भी रख दो तो भी उसका परिणाम नहीं बिगड़ता, खाने की इच्छा ही नहीं होती। ये जो बाह्य त्याग की बात है ना, ईमानदारी से देखा जाए तो इसमें कोई माल नहीं है ज्यादा। आप नमक का त्याग कर दो मान लो, तो दो दिन चार दिन आपको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन फिर बाद में आप एडजस्ट हो जाओगे, जीभ उससे एडजस्ट हो जाएगी, तो बिना नमक वाले ही आपको अच्छा लगने लगेगा। अरे हमारे साथ तो भोगा हुआ है, हम जब पहली बार शिकागो गए 99 में 10 लक्षण पर्व में, तो वहां तो भैया बिल्कुल जैसे मुनि भोजन करते नीरस वैसे नमक नहीं, मिर्ची नहीं, कुछ नहीं, हे भगवान ये लोग कैसा भोजन कर। वो इस मामले में बड़े वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, हेल्थ कॉन्शियस वाले, तो भी बीमार तो रहते ही हैं तो अभी हम उनको बोले कि थोड़ा नमक देना नमक देना, तो मना तो करे नहीं, जानते हैं कि ये भारतीय तत्व हैं तो वो नमक की वो डिब्बी रखें और इनको बोले बहन जी पंडित जी को बोलो कि ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। उनकी आदत शुरू से ऐसी पड़ गई, समझ में आया। तो आप कम से कम ये रसना इंद्री में, व्रतशील संयम में, आप जैसा अपने को थोड़ा शुरुआत में फर्स्ट गियर में गाड़ी ज्यादा पेट्रोल खाती है, हैं? नहीं तो बाद में जब नॉर्मल हो जाता है तो इजी हो जाता है, उसमें कोई समझ लो फिर ऐसी शारीरिक कष्ट नहीं होता है, मानसिक संबल बना रहता। तो कहने का आशय उसकी आदत में सी हो गई। किसकी? वो जिसको अभी उसको करेले का जूस भी गन्ने का रस जैसा लगने लगा, वैसा स्वाद उसमें आने लगा। अभी दूधी की उबली हुई जो साख है उसमें भी उसको अच्छा लगने लगा, वो बिना घी की रोटी वगैरह सभी। एक बार किसी पार्टी में गया, अभी क्रिया और परिणाम की बात हो गई ना, क्रिया परिणाम की बात हो गई ना, अब किसी पार्टी में जाना पड़ा, बहुत निकटवर्ती था या घर में ही शादी हुई, मेहमान लोग सब आए, तो जो शादी में जैसा बनता है भोजन वैसा बना। तो उसके मित्रों ने कहा आइए आइए हमारे साथ में बैठिए बैठिए, इनके लिए भी लगाओ भाई प्लेट लगाओ, इनके लिए भी लगाओ। उसने मना कर दिया, मेरे को तो नहीं चलता है। तो लोगों ने पूछा, अब किसी को पता नहीं था ना, तो लोगों ने पूछा क्या बात है, पहले तो आप बड़े शौक से खाते थे, आपको अच्छा नहीं लगता क्या? ऐसे भी लोग करते, जब मान लो जैसे कोई चीज किसी ने परसी, दूध पाक हुआ कि सीरा हुआ, अपन ने कहा बस अब और नहीं, क्यों अच्छा नहीं बना क्या? अरे यार अच्छा बनेगा तो क्या सारा हमें को भोगना पड़ेगा क्या? ये कोई प्रश्न है, है? ये तो पता नहीं क्यों आज आठवें दिन आया, पहले दिन आना चाहिए था ये सब। चलो अब नेक्स्ट टाइम काम में आएगा। तो उसने यही जवाब दिया, क्यों आपको अच्छा नहीं लगता क्या? अच्छा नहीं बने? देखो भाई साहब, अब तो हमारे वो दिन गए अच्छे दिन, समझ में आया, अब अच्छे दिन गए। अब तो भैया डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुम्हें सही ढंग से जीना है, लंबी उम्र जीना है, तो इन सब चीजों से परहेज करना पड़ेगा। तो तुमको पसंद नहीं है क्या? पसंद तो है, ये बात है, पसंद है तो भी खाने की इच्छा नहीं है। ऐसा होता कि नहीं होता मुझे बताओ? लाइफ में बहुत सी चीजें होती हैं हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन ये जानते हैं कि ये नुकसानदायक, क्योंकि पसंद होना वो राग की तीव्रता है, वो कसाई की तीव्रता है, तो उसका भी उदय चलता है, समझ में आया। और विवेक बोलता है कि नहीं नहीं भैया, भले पसंद हो गए तो भी अपने को कंट्रोल तो करनी पड़ेगा, तो कंट्रोल भी करता है। यानी क्रिया में नहीं है, परिणाम में नहीं है, लेकिन अभिप्राय में सुख बुद्धि पड़ी हुई है। इसमें एक बहुत सुंदर प्रकरण है, वो मैं अभी आपको इसी में से बताता हूँ, बहुत आनंददायक। मुझे तो हिंदी के पेज वेज सब याद है। देखो, द्रविलिंगीनो अन्यथा पणु, हाँ ये द्रविलिंगीना धर्म साधन मा अन्यथा पणु 249। यहां ज्यादा स्पष्टीकरण करने की जरूरत नहीं है, हिंदी समाज में तो बहुत खोल खोल के बोलना पड़ता है कि भैया जब द्रविलिंगी की बात करें तो ये मुनियों की निंदा कर रहे हैं, ऐसा मत समझना है, ये किसी की निंदा नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है ऐसा। और अपन लोगों की भी ऐसी समलो वृत्ति हो गई है कि मुनि या द्रविलिंगी नाम आया तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब वो लोग गलती करते हैं, हम तो बिल्कुल शुद्ध सात्व, हम तो कोई गलती करते ही नहीं है, हम तो ज्ञानी है, समझ में आया, ऐसा अभिप्राय हो जाता है। तो अपना मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, ये फार्मूला किसके ऊपर लगाना? दूसरे के ऊपर के अपने ऊपर? मैंने परसों शायद खेमचंद भाई जो से सुना था, वो श्रीमद जी का जो था ना एक दोहा, नहीं दे तू उपदेश को प्रथम ले ही उपदेश, सबसे न्यारा अगम है ये ज्ञानी का देश। तो भैया अपने अनंत बार नौवें ग्रीवक तक गए हैं, आज जैन कुल मिल गया और थोड़ी तत्व की बात मिल गई तो हल्दरनी बे गांठ राखी ने गांधी न कहवाए, सुना ये? ये तो गुजराती कही है, हल्दी की दो गांठ रख ली तो मैं व्यापारी बन गया, ऐसा दो चार शास्त्रों का अभ्यास हो गया तो मैं भेद ज्ञानी अनुभवी हो गया, इस धोखे में नहीं रहना। अभिप्राय को पढ़ने की कोशिश करना चाहिए भाई, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ। पंडित साहब ने एक शायद शांत नाष्टक या ऐसा समता सोडिसी वगैरह का एक काव्य बहुत बढ़िया है, तत्वों का निर्णय करना ही पहला पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ पंडित जी टोडरमल जी का है ये वाक्य, तो तेरे हाथ में तो यथार्थ तत्व निर्णय करना है। तो हम अपनी क्रिया और परिणाम के बीच में तो बहुत खेलते हैं, बहुत विचार करते हैं, बहुत सोचते हैं। आत्महित करना हो तो परिणामों के बारे में बहुत सोचते हैं, पर परिणाम की कर्तव्य बुद्धि के बारे में सोचा कभी है? मैं तो बहुत कहता हूं, कोई ऐसे डिमांड करे रे इस भाव में तो सम्यक तो करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, बड़ी अच्छी बात है, अभिनंदन करने लायक भावना है, व्यवहार में अच्छी है। उससे पूछो कि तुम्हें सम्यक चाहिए, आप कौन है भाई साहब, आधार कार्ड में आपकी आइडेंटिटी क्या लिखी है, है? तो अपने को मिथ्या दृष्टि मानेगा तो सम्यक की डिमांड होएगी, और अपने को ज्ञायक अनुभव करेगा तो सम्यक हो ही गया, अब डिमांड की क्या बात है। कहने में बड़ा सरल लगता है, आसान लगता है कि यार ये क्या बात हुई, करना धरना यही तो सब लोगों को शिकायत थी गुरुदेव, करना धरना कुछ नहीं है। एक पंडित ने ऐसा कमेंट्स किया था, कभी गुरुदेव यात्रा पे गए होंगे तो किसी जगह उनका व्याख्यान हुआ, शायद 17वीं 18वीं गाथा पे इस पे व्याख्यान हुआ, फिर बाद में उसने कमेंट्स किया, बस करना धरना कुछ नहीं, बस मैं भगवान आत्मा शुद्ध हूँ, सिद्ध समान शुद्ध हूँ, बस लड्डू खाओ और मोक्ष चले जाओ, ये बढ़िया धर्म निकाला। ये अपने को सर्टिफिकेट मिलता है अपन लोगों के लिए ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो उसकी समझ में नहीं आता। तो द्रव्यलिंगी शब्द से अपना भूतकाल देखना, दूसरों का वर्तमान नहीं देखना। क्या बोला? अपना भूतकाल देखना, कैसे हमने ऐसे उपसर्ग सहन किए होंगे, ऐसे परिसर सहन किए होंगे, ऐसे महाव्रत पाले होंगे, वन जंगल में रहे होंगे, तो भी मोक्ष मार्ग नहीं हुआ, तो नौमी गिरक जाके चले आए और फिर बाद में निगोद भी घूमे आए, तो ये क्या तमाशा है? ऐसा विचार तो करे, अपने आप को खड़ा करे उस जगह पे हैं? तो देखो ये वाला है या प्रथम तो संसार मां नरक आदि मां दुख जानी आया 249। प्रथम तो संसार मां नरक आदि ना दुख जानी तथा स्वर्ग आदि मां पण जन्म मरण आदि ना दुख जानी संसार थी उदास थई ने ते मोक्ष ने इच्छे छे। तो परिणाम कैसा है? संसार से उदास है, मोक्ष की चाह है, मात्र मोक्ष अभिलाष, कषाय नी उपशांतता, उपशांत ने मंद कषाय है, मात्र मोक्ष अभिलाष, आत्मार्थी है, ये परिणाम की बात है। ये संसार से उदास क्यों हुआ, वो क्यों वाला फार्मूला लगा, क्यों क्यों चित्त नहीं लगता? अरे ये स्त्री पुत्र सब स्वार्थ के सगे हैं, सब धुतारानी टोली छे समझ में आया, ये सब कोई किसी के काम में नहीं आता है, कोई किसी का सुख दुख बांट नहीं सकता है, सबको अकेला जन्मना पड़ता है, अकेला मरना पड़ता है, वो है ना, आप अकेला हो तरे मरे अकेला होए, या कबू ना जीव के साथी सगा ना कोए, और ये संसार के सुख दुख सब जीव को अकेले ही भोगना पड़ता है, तो इस संसार में क्या रखा है, समझ में आया? तो ऐसा जानकर संयोगों के प्रति द्वेष बुद्धि हो जाती। सोचना भाई कितना बहुत बाल के बारीक बारीक बाल बराबर बारीक अंतर है। भावना बड़ी अच्छी है, ज्ञानी भी 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं तो ऐसे ही चिंतन करते, 12 भावना में यही लिखा है, अपन तो अभिप्राय की बात करते हैं ना। संसार से उदास हुआ क्यों हुआ? संसार में सुख नहीं है तो बात तो सच्ची है, फिर कहां सुख दिखा तुझे, आत्मा में तो सुख दिखा नहीं। अपने जो गीत बनाया उसका जो पहला छंद है वो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है, केवल इसलिए कि कोई जीव के कैसे परिणाम होते होंगे कि जब वो राजपाट रानी वानी घर बार सब परिग्रह छोड़ के और नग्न दिगंबर होकर के वन में जाने के लिए तैयार होता हो या त्याग करने के लिए वहां जाता हो, कि आत्मा में लीन होने को मन मचलता है। अभी एक आत्मा सिवाय दूसरी कहीं चित्त लगता ही नहीं है, ख्याल में आया। स्वानुभूति दर्शन में ये प्रश्न है, पात्रता किसे कहते। मेरे हिसाब से तो आप लोगों ने कुछ किया भी होगा, करते भी होंगे, मुझे पता नहीं। उस पे तो जितना एकेडमिक वर्क होवे, समझ में आया, उसके ग्रुप बना करके क्वेश्चन आंसर होवे, उसकी प्रतियोगिताएं होवे, उसकी परीक्षा होवे, उस पे भाषण प्रतियोगिता होवे, तो ये है बहुमान और उनका लाभ लेने का तरीका है। तो उसमें आया पात्रता किसे कहते हैं, आत्मा सिवाय दूसरा कहीं अच्छा नहीं लगता है, ऐसी जो स्थिति बन जाती है खरे कर, उसका नाम पात्रता है। तो संसार से उदास है क्योंकि नरक में ऐसे दुख हैं, फलाने में कोई के स्वर्ग में तो नहीं है भाई, नरक जैसे दुख स्वर्ग में तो नहीं है, तो स्वर्ग में भी कौन सा भला है, वहां भी मरना तो पड़ता ही है। पूजा आप लोग करते होंगे, करें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की कैसी अद्भुत टेव, अंत में बिलखे छह छह मास, कहें हम कैसे उसको देव। दशाचारों गति की दयनीय, दया का किंतु न यहां विधान, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। इसका अर्थ समझते हैं, शरण जो अपराधी को दे वह, अरे अपराधी वह, इसके दो अर्थ हैं। एक तो सिंपल, भगवान को व्याकरण के हिसाब से आठवीं विभक्ति में रखना, आठवीं जान, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपदान अधिकरण संबोधन, हे भगवान जो अपराधियों को शरण देता है वो खुद अपराधी। आपके घर में अगर कोई आतंकवादी आके ठहर जावे यहाँ पे वेश बदल के और ये और किसी के रेफरेंस से आ जावे, फिर बाद में पता चले वो दो दिन यहाँ ठहरा है, तो आपको दंड होगा कि नहीं वो तो अलग बात है, पुलिस आपको ले तो जाएगी कम से कम इंक्वायरी के लिए। समझ में आया, तुमने कैसे रखा इसको, तुम्हारे पास किसका फोन आया, तुम्हें कैसे पता चला। तो अपराधियों को शरण देने वाला स्वयं अपराधी है, ऐसा भगवान से प्रार्थना कर रहे। ये तो सिंपल अर्थ, अभी दूसरा थोड़ा विचित्र है। जो भगवान ऐसा कहता है कि मैं अपराधियों को शरण दे सकता हूं, मेरी शरण में आ जाओ तुम्हारे सब पाप माफ हो जाएंगे, वो भगवान खुद अपराधी है। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। जो इसका आध्यात्मिक अर्थ भी लगा सकते, जो श्रद्धान राग को अपना मानती है, जो मान्यता विकार में एकत्व बुद्धि करती है, अपराध है ना विकार, तो उसमें जो एकत्व बुद्धि करता है वो परिणाम मिथ्यात है, वो महा अपराध है। तो यहां तो इसलिए लिया, दशा चारों गति की दयनीय, चारों गति की दशा दयनीय, संसार में कहीं सुख नहीं है, ठीक है, इसलिए उदास हुआ है और मोक्ष को चाहता है, पर मोक्ष में क्या है, कौन सा सुख है, कैसे होता है, उसका भाव वासन नहीं है कुछ। दूसरे लोग मोक्ष को अच्छा कहते तो अच्छा है, अपन को भी चलो एक बार जाके तो देख के आवे, क्या क्या प्रॉब्लम है, है? हवे एक पंडित जी का कमेंट सभी टोडरमल जी का, ए दुखो ने तो बधाए दुख जाने छे, बधाए माने सब जगत के सब प्राणी, जन्म मरण में दुख है ऐसा कौन नहीं मानता, रोग में दुख है, गरीबी में दुख है, ऐसा कौन नहीं मानता, सभी मानते। और कुछ समझदार लोग बोलते बोलते ये वैभव में भी सुख नहीं है, इसमें भी दुख है, समझ में आया ना, और पुण्य के फल में भी दुख है, पाप के फल में भी दुख है, सभी मानते लेकिन अभी देखना, अभी मेन बात, पण इंद्र अहिमिंद्र आदि विषयानुराग थी इंद्रिय जनित सुख भोगवे छे। अब इसमें आप सोचना, कहां क्रिया है, कहां परिणाम है, कहां अभिप्राय। क्या इंद्र अहमिंद्र आदि विषयानुराग, विषयों के प्रति अनुराग, जो इंद्रों की इतनी सारी अप्सराएं, इंद्र का वैभव गुरुदेव तो कितना बताते, 32,000 क्या है वो, 32,00,000 विमान का स्वामी है देवों का, ऐसा बहुत ऐश्वर्य आज्ञा चलती है। तो ये विषयानुराग है, ये परिणाम की बात है। इंद्री जनित सुख भोगवे छे, ये क्रिया की बात है। अब उन लोगों के कैसे सुख होंगे मेरी तो समझ में नहीं आता, उनको तुम्हारी पूर्ण पीढ़ी मिलती है, हैं? ये जो बढ़िया खाना पीना बढ़िया जोरदार, यहाँ अपन लोग ठंडा गर्म ये सब दुनिया भर का बनाते हैं, अभी तो 5600 प्रकार के आइटम हो गए हैं, तो उनके भाग में है ही नहीं, समझ में नहीं आता कौन सा सुख है उनको भैया। अरे तुम्हारा सुख तुम अपने लेवल पर ही सोचोगे, हैं? वो तो पुण्य इतना जबरदस्त है कि अपन उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, उनके भोगों की भी अपन कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन इंद्रिय जनित सुख तो भोगते ही है, ये क्रिया। तेने पण दुख जानी, ये तेने कौन है, वो इंद्रिय सुखों को भी दुख जानकर निराकुल सुख अवस्था ने ओलखी ने, देखो पहचान सुख का स्वरूप क्या है, वो निराकुलता आकुलता रहित एक चैतन्य आनंद ज्ञान आनंद चैतन्य तत्व चैतन्य का उछाला, चैतन्य की परिणति, चैतन्यमय परिणमन, वो सुख अवस्था ओलखी ने जे मोक्ष ने चाहे छे तेज सम्यक दृष्टि जान। देखो ये मोक्ष ने इच्छे छे, ये शब्द ऊपर भी आया था, ये मिथ्या दृष्टि के लिए भी आया था, मोक्ष ने इच्छे छे, और इंद्र अहमिंद्र आदि मोक्ष ने चाहे छे, ये इनके लिए भी आया। सम्यक ज्ञानी भी मोक्ष चाहते हैं, अज्ञानी भी मोक्ष चाहते हैं, अज्ञानी की चाह नेगेटिव है, उसको आत्मा की नहीं पड़ी, आत्मा से मतलब नहीं है, तो संसार से भागना है, संसार के दुखों से भागना है, और वो वास्तव में खरेखर न तो सुख को जानता है न दुख को जानता है, प्रतिकूल संयोग में सुख मानते हैं और अनुकूल संयोगों में प्रतिकूल संयोग में दुख मानते हैं और अनुकूल संयोगों में सुख मानते हैं, और ज्ञानी रागादि भाव में दुख मानते हैं और आत्मा के अवलंबन से जो निराकुल सुख रूप परिणति होती है उसको सुख रूप जानते हैं। तो वो जानते हैं कि यहां एक निराकुलता का कण प्रकट हो गया। देखो जिस दिन समझ लो बच्चे लोग परीक्षा देते हैं, आपने भी दी होगी, थोड़ा याद करो, फाइनल पेपर 12th क्लास का SSC का देकर के आप फाइनल बिल्कुल लास्ट पेपर, तो अभी एग्जाम के हाल के बाहर निकले तो कैसे लगता है? मैं तो छेड़ाला को याद करता हूं, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के ना ही कयो, ऐसा सुख होता है कि इंद्रों को भी नहीं होता। क्यों? अरे वो परीक्षा देवे तो फिर परीक्षा से निवृत्ति का सुख भोगे, वो परीक्षा ही नहीं देते तो कहां से सुख होगा। एक आकुलता मिट गई लौकिक क्षणिक थोड़ी देर के लिए, तो भी जीव अब वहां कोई खाने पीने का सुख नहीं है, है? कोई खाने पीने का विषय भोग भोगने का, वो झंझट तो बाद में होने वाली है सब, लेकिन हाल के बाहर निकलते समय जो निराकुल सुख का अनुभव करते, ऐसे कई उदाहरण है। एक ग्रंथ है शांति पथ प्रदर्शक, हमने अपनी लाइफ में सबसे पहला आध्यात्मिक ग्रंथ कोई पढ़ा सोनगढ़ जाने के भी पहले, तो वो शांति पथ प्रदर्शक था, हमारी माँ ने प्रेरणा की थी कि तुम इसको पढ़ा, 2-3 बार पढ़ा, डायरी में नोट किया उसके पॉइंट। उसमें उदाहरण आया, बेटी की शादी हुई, अब बेटी की विदाई हो गई, मेहमान सब चले गए, बारात अच्छी तरह से विदा हो गई, फोन भी आ गया कि हम अच्छी तरह से पहुंच गए हैं, अब अपन घर में आराम से बैठे हैं, समझ में आया, तो कैसा लगता है? ऐसा बाबू भाई ने एक बार बताया था, अपने समाज में एक विद्वान हुए बहुत बड़े पंडित फूलचंद जी शास्त्री, उन्होंने जैन तत्व मीमांसा और खानिया तत्व चर्चा, अपनी शायद प्रकाशित भी हो रही है खानिया तत्व चर्चा, तो वो उन्होंने लिखी, उन्होंने कहा जब उनकी आखिरी बेटी की शादी हुई तो बाबू भाई को पत्र लिखा, बाबू भाई आज मुझे ऐसा लगा कि मोक्ष कैसा होता होगा। आकुलता मिटने का नाम सुख है। लोक में भी ऐसा टोडरमल जी ने 9वें अध्याय में सिद्ध किया है। जो खाने पीने में, टीवी देखने में, मजा मौज में, मैच देखने में अपन को फील होता है कि सुख है, वो तो कल्पना है। उसमें जो आकुलता का जो पारा है ना, टेम्परेचर, वो डाउन होता है। विषय की पूर्ति से जो आकुलता घटती है तो सुख जैसा लगता है, इसलिए उसका नाम सुखाभास ऐसा रखा है। तो ज्ञानी निराकुल सुख को जानते हैं, इसलिए मोक्ष को चाहते हैं। तो इस तरह एक तरफ द्रविलिंगी को खड़ा किया और एक तरफ भरत चक्रवर्ती या इंद्र हेमेंद्र को खड़ा किया। अभी दोनों की क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। एक विषयों का त्यागी द्रविलिंगी और वो चक्रवर्ती इंद्र इत्यादि वो भोगी, ये क्रिया वाला लेवल है। ये क्रिया में ये पोजीशन है, ठीक है। परिणाम में वो विषयों का त्यागी है तो उसके विषय मंद हुए हैं, विषयों की कषाय जो है, तभी तो त्याग किया, नहीं तो कैसे करता। और ये भोगी है तो मतलब विषयों के प्रति अनुरागी है, तीव्र अनुरागी। अरे कितना अनुरागी है, इसके लिए प्रवचन सार में शुभ परिणाम अधिकार पढ़ो। ये जो इंद्र हैं और अहमिंद्र इत्यादि हैं, अहमिंद्र का तो ज्यादा नहीं है, इंद्र वगैरह हैं, ये वो भैंस के थन में जोंक लग जाती है और वो खून पीती रहती है और मर जाती है, वैसी दशा इन सम्यक दृष्टियों की बताई प्रवचन सार में। गजब हो गया। कहां समय सार बोलता है कि ज्ञानी को राग नहीं होता, ज्ञानी राग के ज्ञाता होते हैं, और कहां प्रवचन सार बोलता है कि ये शुभ परिणाम से देव इत्यादि भी कितने दुखी होते। तो ये वो विषयों का अनुरागी और ये विषयों का समझ लो त्यागी, कौन? द्रविलिंगी। और अभिप्राय में ये विषयों को दुख जानते हैं ज्ञानी, और वो द्रविलिंगी विषयों में सुख मानता है। सुख बुद्धि तो पड़ी हुई है, मिठाई खाना तो अच्छा लगता ही है, पसंद तो है ही, वो तो मरने का डर है, स्वास्थ्य बिगड़ने का डर है, इसलिए नहीं खाता। ये है, बहुत अच्छा प्रकरण है। समय अपना लगभग हो ही रहा है, फिर अंत में एक प्रकरण को मैं बहुत शॉर्ट कट में बोलता हूँ, फिर से वापस आ जाइए 243 पर। वो जो बोल्ड में लिखा है ना, फल तो अभिप्राय मां वासना छे तेनु लागे छे। क्या इसका फल, फल लगने का क्या मतलब है? कर्म बंद होता है तो, जैसे कोई जीव को प्रति समय, वो एक समय प्रबद्ध कर्म प्रकृतियां आती हैं, सब बताते हैं ना, इसमें क्रिया का कितना परसेंट योगदान है। जैसे मान लीजिए 1 किलो कर्म बंधे है, कोई आदमी टीवी देख रहा है, मैच देख रहा है, तो 1 किलो कर्म बंधे, तो उसमें क्रिया का कितना, भावों का कितना और अभिप्राय का कितना। तो क्रिया का फल तो शून्य है भाई साहब, घबड़ाना नहीं। फिर ये क्या बोल रहे, तो हम क्रिया काय के लिए करें, अशुभ क्रिया क्यों छोड़ें? तो भाव से करोगे ना, बात तो साथ में भाव तो खड़े हुए है ना, बिना भाव के तो क्रिया होती नहीं ना। जैसी क्रिया हो रही है वैसा ही बंद होगा, इसकी बिल्कुल समझ लीजिए गारंटी नहीं। उस क्रिया के काल में जैसे भाव हो रहे हैं वैसा बंद होगा। अब थोड़ा कहा, बहुत जानना, समझ में आया? समझ लो अपन सीडी में बैठे हैं और ऑफिस की बात के, बेटे बेटे की बात के, कोई राग द्वेष की बात के, कोई बिजनेस की बात, उधर उपयोग चला गया तो आप बताओ पुण्य बंद होगा कि पाप बंद होगा? इसमें तो सिंपल बात है ना, इसमें परिणाम जैसा होगा वैसा बंद होगा। क्रिया तो जड़ की है, उसका तो कर्ता आत्मा है ही नहीं, तो क्रिया से बंद कैसे होगा? ये तो लॉजिक है ना इसके पीछे। तो परिणाम का कर्ता जीव है और परिणामों के अनुसार ही प्रकृति आती है। आपको मालूम होगा एक तत्वासूत विधान भी मैंने लिखा है, ये प्रवचन सार जैसा, वैसे छोटा है। उसमें 6वें अधिकार में किस परिणाम से कौन सी प्रकृतियां ज्यादा आती हैं, वो सब 8 कर्म की प्रकृतियों के आश्रव का कारण बताया गया। तो परिणाम से होता है, लेकिन उसमें भी एक विचित्रता है कि अगर मिथ्यात्व के साथ में रागादि हैं तो समझ लो एक किलो बंद में 999 ग्राम योग जो योगदान है वो मिथ्यात्व का है, अकेला एक ग्राम समझ में आया वो रागादि का है। इसलिए जो जिन्हें समय सार का स्वाध्याय है वे जानते होंगे कि समय सार की शैली में ज्ञानी को बंद नहीं होता, ये बहुत कहा है, आश्रव नहीं होता, बंद क्यों नहीं होता। पंडित जयचंद जी छावड़ा ने इसका भावार्थ में बहुत जगह जगह खुलासा किया है। तो भैया होता है नहीं होता है ऐसा मत समझना, गुरुदेव भी बोलते अगर बंद सर्वथा नहीं होता हो तो फिर चारित्र लेने की क्या जरूरत है, फिर मुनि बनने की क्या जरूरत है। तो बंद तो होता है, अनंत संसार का बंद नहीं होता, अल्प संसार का होता है तो उसको गौण करके बंद नहीं होता ऐसा कहा जाता है। तो वास्तव में जैसा कि इस अधिकार के प्रारंभ में कहा, इस भवतरु का मूल संसार रूपी वृक्ष का मूल जड़ अगर कोई है तो वो मिथ्यात् भाव है। तो उसी हिसाब से इसमें भी अभिप्राय में जो वासना है यानी सुख बुद्धि है, कर्ता बुद्धि है, भोक्ता बुद्धि है इत्यादि इत्यादि नाना प्रकार की जो भूल पड़ी हुई है अभिप्राय में, विपरीत श्रद्धान है वो ही बंध का कारण। वो निकल गया तो समझ लो संसार समाप्त हो गया ऐसा मानना। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं इस प्रकरण को आप पूरे सातवें अध्याय को पूरे ग्रंथ को आद्योपांत बारंबार इसका स्वाध्याय करें, इस पर गुरुदेव के प्रवचन सुने, इस विषय पर खास जो पुस्तक लिखी है उसे भी पढ़ें और अन्य अन्य तरीकों से भी इसका मंथन करें, इस पर प्रतियोगिता करें, बच्चों की भाषण प्रतियोगिता रखें। ये सब एक्टिविटी ग्रंथाधारित होनी चाहिए। ये सातवें अधिकार के ऊपर बच्चे आज बोलेंगे, सातवें अधिकार में व्यवहाराभाषी पे बोलेंगे, एक निश्चयाभाषी पे बोलेगा, एक उभयाभाषी पे बोलेगा, ऐसा डेवलपमेंट होता है तो ज्यादा फायदेमंद होता है। अभी मैं यहीं विराम लेता हूं, बाकी समय